This is an ABP Life podcast.
चुनाव में ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट मशीन की पर्चियों से कराने की मांग वाली याचिका पर 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये याचिका एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल की ओर से अगस्त 2023 में लगाई गई थी और मांग की गई थी कि ईवीएम में पड़े सभी वोटों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से करना चाहिए। साथ ही याचिका में ये भी कहा गया कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए, वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अब ऐसा इसलिए ताकि चुनाव में गड़बड़ी की जो भी आशंका है, जो भी संदेह है, ये खत्म हो जाए। जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस संदीप मेहता, इनकी बेंच ने चुनाव आयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अब 17 मई को सुनवाई भी होगी। ये भी आपको बता दें कि करंट स्टेटस के मुताबिक रैंडम 5 ईवीएम का ही वीवीपैट से मिलान होता है। याचिका में ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही वेरिफिकेशन होता है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि ये मुद्दा उठा हो। 2019 के लोकसभा चुनावों से भी पहले 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने सभी ईवीएम से कम 50% वीवीपैट मशीनों की पर्चियों से वोटों के मिलान करने की मांग की थी। उस समय चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ही ईवीएम का वीवीपैट मशीन से मिलान करता था। 2019 को सुप्रीम कोर्ट मिलान के लिए ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी थी। मई 2019 के कुछ टेक्नोक्रेट्स ने सभी ईवीएम की वीवीपैट से वेरीफाई करने की मांग की याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ऐसे में अब फिर से याचिका दायर कर ये सवाल उठाया गया है और इस पर आने वाली 17 मई को सुनवाई भी होगी। वहीं ये भी एडीआर फाइल की गई है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। आइए अब इस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। आखिर ऐसा करना जरूरी है कि नहीं, आखिर ऐसा करने में क्या चैलेंजेस आएंगे, और भी बहुत कुछ बातें जो हमारे साथ करने के लिए आज एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर FYI में जुड़ चुके हैं।
मैं शिवाजी सरकार हूँ, मैं प्रोफेसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन था और प्रैक्टाइजिंग जर्नलिस्ट हूँ।
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो यही सर, चुनावी प्रक्रिया पर इस तरह जो संदेह किया जा रहा है, ऐसे सवाल का आना क्यों हो रहा है?
बहुत वाजिब सवाल है और लोकतंत्र में ऐसे सवाल उठते रहने चाहिए। लोकतंत्र में किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वो जो मनमानी आए वो करे। लोकतंत्र की दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, जो भी व्यक्ति कर रहा है, सिर्फ सरकारी नहीं, वो सभी लोगों को जानने का अधिकार है। लोकतंत्र में जानने का अधिकार बहुत व्यापक है और इसको जो है 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर डिस्कस कर रहे थे और उसकी जो उन्होंने निर्णय दिए उसमें उन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एब्सोल्यूट।
ओके,
और इस एब्सोल्यूट का मतलब है कि हर किसी को हर कुछ कहने का अधिकार है, एक लिमिटेशन में कि अपशब्द नहीं कहें। और हर किसी को ये जानने का अधिकार हो रहा है कहाँ क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, उसके लिए क्या बोला जा रहा है, उसकी क्या आलोचना हो रही है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी बातें जो हैं ये सबको जानना है। क्यों जानना है? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जानना है क्या अधिकार इसलिए है कि लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का क्या प्रोसेस है
जी?
कि ये जो सारी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो प्रोविजन है वो इसलिए है कि लोग सारे विचार जो फेवर में हैं और खिलाफ भी हैं उनको जाने, उन पर सोचें और समाज जो है एक सोशल डायलॉग के जरिए एक सही निर्णय ले सके। या सही निर्णय के साथ ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है कि इससे एक पूरे समाज में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी की क्यों जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट का उसका कहना है ट्रांसपेरेंसी की जरूरत इसलिए है कि समाज में अगर कहीं कोई बात सबको पता होती है तो समाज में लोगों पे एक दूसरे के प्रति संदेह नहीं होता। तो ये सारी बातें जो है आज जो सवाल उठ रहे हैं वो इस सवाल से उठ रहे हैं, संदेह क्यों उठे किसी चीज के
जी?
वोट, देखिए वोट का क्या, ये जो वीवीपीएटी का पूरा नाम क्या है, वोटर्स वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेक। यानी कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में वोट डाल रहे हैं जिसका कहीं कोई वजूद नहीं है, मशीन के अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को नहीं मालूम। किसी चीज को छुपाना हो सबसे आपसे अच्छा है कह दीजिए कि ऑनलाइन देख लीजिए और ऑनलाइन आपको कभी मिलना नहीं। वोट के साथ भी ये चीज ना हो इसलिए बहुत जद्दोजहद के बाद एक पेपर ट्रेल की व्यवस्था की गई और उसके लिए भी कई मुकदमे हुए थे, ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया था। और उसके बाद पहले एक मशीन पे हुआ, फिर ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 मशीनों पे होगा और उसकी काउंटिंग होगी 5 मशीनों। अब ये सबसे बड़ा सवाल पहले तभी उठा कि 5 मशीनें ही क्यों, सारे मशीनों में क्यों नहीं, सारी जगह ये क्यों नहीं होगा।
Exactly.
और वो पत्ता जो है मशीन के अंदर ही क्यों रहेगा, और कुछ सेकंड्स में आप देख भी नहीं पाते हैं कि आपका वोट सही में कहाँ गया। ये जो सारी प्रोसेस है, देखिए सारी ये प्रोसेस के वक्त वोट जो वोट डालता है उसको संदेह रहता है कि वोट हमने जो डाला है जिसको डाला है उसको पढ़ा भी है कि नहीं। और ये जो है जनतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के सवाल अगर उठते हैं तो हमें पूरी जनतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जनतांत्रिक व्यवस्था की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है वो। जी
जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। आपसे पूछना चाहूंगी बींग एन एक्सपर्ट, अगर आप इस पर अपनी राय देना चाहें क्या ऐसा संभव है?
इलेक्शन कमीशन का कहना है ये कि छेड़छाड़ नहीं हो सकती है।
जी,
हम मान भी लेते हैं इसे और इसी की वजह से आज तक चुनाव ये चल रहे हैं।
जी,
पर उसमें एक सवाल और उठता है। हम ये देख चुके हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो कैसी भी हो, चाहे आपका एक लैपटॉप हो जिसमें लगातार इंटरफेरेंस होते रहते हैं कि आप इसको अपडेट कीजिए, हम क्यों अपडेट करें, उस पर एक बहस होनी चाहिए, नहीं हुई अभी तक। हमने खरीद लिया, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, हमें चलाने नहीं दिया जाता, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू। और हम ये भी देख चुके हैं कि किसी भी मशीन को कई तरह के सॉफ्टवेयर से उसमें इंटरवेंशन हो सकता है, जैसे सामान्य रूप से जो हम करते हैं ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, इट इज एन इंटरवेंशन। और ये इंटरवेंशन जो है ये कोई नहीं कह सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में नहीं हो सकता है। हम देखते हैं, हम जब हवाई जहाज में जाते हैं तब से कहा जाता है आप अपने मोबाइल बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे जो है जो सिग्नल्स हैं उस सिग्नल्स इफेक्ट होने से हवाई जहाज की जो ट्रैफिक मूवमेंट्स के जो सॉफ्टवेयर है वो इफेक्टेड हो सकते हैं। तो चीज जब इतनी बारीकी तक हो सकती है तो ये मानना कि एक वोटिंग मशीन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस कहीं से हो नहीं सकता है, ये अपने आप में बहुत सही नहीं लगता है। इंटरफेरेंस हो सकता है, नहीं होता होगा वो दूसरी चीज, पर ये हो नहीं सकता है, ये सवाल, ये जो बात है ये गलत है।
जी, ईवीएम मशीन हमने भी बाहर से ही ये कॉन्सेप्ट लिया है, हमारे देश का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्या बाहर भी उस पर्ची से मिलान होता है?
लेकिन आम तौर पे विश्व में बहुत ही कम जगह ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आज भी वोटिंग होती है, क्योंकि उसके साथ ये जो हमने अभी सवाल उठाए हैं ये सवाल जुड़े हुए हैं। अमेरिका में भी जो इलेक्शंस होते हैं उन्होंने आज तक जो है इलेक्ट्रॉनिक जाने की कोशिश नहीं की, ब्रिटेन में नहीं होता, यूरोप में ज्यादातर देशों में नहीं होता है,
जबकि अमेरिका तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी है,
अमेरिका ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी है, सब कुछ है। पर ये क्योंकि देखिए क्यों नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर किसी को भी भरोसा नहीं है कि इसमें इंटरवेंशन नहीं होगा, और चूंकि इसमें सारी चीजें मशीनों के अंदर छुपी हुई होती है इसलिए इसका ट्रस्ट डेफिसिट इनबिल्ट है, लोगों का उसमें विश्वास कम होता है या नहीं होता है। तो इस वजह से जो है चुनाव के प्रोसेस में किसी भी तरह का ये ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से जो है जब इस मशीनों को लगाया गया था तब भी बीजेपी के अध्यक्ष थे एल के अडवाणी, उन्होंने जो है इसको अपोज किया था, कांग्रेस में भी कई तरह की आवाजें उठी थी, तब कांग्रेस की सरकार थी जब इसको लगाया गया था। तो उसके बाद लगातार ये सवाल उठते रहे, ये सवाल लेके कई बार लोग कोर्ट में गए हैं या कोर्ट से वापस आए हैं, आज भी 2018 से ये केस पेंडिंग पड़ा था। तो इसलिए जरूरी है कि हम इस पर पूरी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है हम उस पर अमल करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है कि आपने 5,000 करोड़ खर्च किए, 26 लाख मशीनें आप लाए और उसमें से बहुत थोड़े से मशीनों को आप कहते हैं कि उसमें से वीवीपैट हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा क्यों, सारी मशीनों में क्यों नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है
जी।
महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब हम वोट कर रहे हैं, अगर हम बैलेट से करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वोट कहां पर पड़े हुए हैं बैलेट पेपर पे और उस हिसाब से काउंटिंग होती है। इसमें मशीन में जो है, मशीन क्या है, मशीन तो एक काउंटर है और काउंटर सही तरीके से काउंटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके ऑडिट ट्रेल है ये, देखिए दिस इज ऑडिट ट्रेल, इसकी ऑडिटिंग कैसे होगी
जी।
जब वो काउंटिंग और जितने इसमें पर्चियां पड़ रही हैं उसका मिलान होगा तभी तो ऑडिटिंग होगी, नहीं तो वोटिंग का जो रिजल्ट है वो सस्पेक्ट रहता है। पिछली 2019 के कई जगहों पर हमने ये देखा कि चुनाव में, एक नंदीग्राम में ही हमने देखा
जी,
चुनाव का ऐलान हुआ उसमें एक रिजल्ट बताया गया, फिर थोड़ी देर बाद कहा गया कि नहीं ये नंबर दूसरा है। मेरठ में भी ऐसे ही हुआ, मेरठ में पहले ऐलान किया गया कि किसी पार्टी का एक जो है वो जीत गया है, जो BSP का था, उसके थोड़ी देर बाद जैसे वो चले गए अचानक आया कि नहीं वो दूसरे पार्टी के जो है वो उनको उससे ज्यादा वोट मिले हैं 3,000, इसलिए। तो ये संदेह के घेरे में ये सारी चीजें EVM को लेकर आती है। सवाल है कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में ये सवाल क्यों होने चाहिए, ये संदेह होना जो है पूरे लोकतंत्र पर विश्वास उड़ जाता है लोगों का। तो लोकतंत्र चलना ही जरूरी नहीं है, लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक प्रणाली पर जो है विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है, विश्वास से ही लोकतंत्र चलता है। अब इलेक्शन कमीशन के जो है आर्गुमेंट क्या है एक बार आप बता दीजिए, जो क्यों नहीं करना चाहते हैं वीवीपैट काउंटिंग
जी।
वो कहते हैं कि इससे समय ज्यादा लगेगा।
इसी से ही जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है आपसे, क्योंकि कपिल सिब्बल जी ने रिक्वेस्ट करी है कि लोकसभा इलेक्शंस पास हैं और इस पर हियरिंग जल्दी हो, ताकि 19 अप्रैल जो पहला चरण है उससे पहले अगर ये हो जाता है तो ये शुरू हो। तो यही मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने समय लंबा मांगा है और वाकई इसके चैलेंजेस क्या हैं अगर कोर्ट कह भी देता है कि आपको सभी का मिलान करना होगा। तो
देखिए सबसे पहले तो हम ये सोच लें कि हमें क्यों मिलान करना है
जी।
सब उससे पहले मैं जवाब ये देना चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है कि काउंटिंग में समय ज्यादा लगेगा अपने आप में गलत रीजनिंग है।
ओके,
जो इलेक्शन 10 दिन के अंदर हो सकता है, इससे ज्यादा हिंदुस्तान में इलेक्शन नहीं लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 दिन लगा लीजिए और उसमें आप 6 फेज कर लीजिए, जितने फेज करना चाहिए सारे फेजेस कर सकते हैं। आप उसको 3 महीने क्यों लगा दिया आपने, अगर आप 12 मार्च की तारीख से देखें और 4 जून तक का जो है वो बस 3 महीने से 1 हफ्ता कम होता है मुश्किल से, है ना, 11 हफ्ते आप चुनाव को खींच सकते हैं इस गर्मी के दिनों में, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि खर्चा पड़ेगा, खर्चा जो है 3 महीने का जो प्रोसेस होगा हर पॉलिटिकल पार्टी का खर्चा पड़ेगा, हर कैंडिडेट का खर्चा पड़ेगा और हर तरह से जो पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का खर्चा जो पड़ रहा है उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। और कुछ घंटे की काउंटिंग में जो खर्चा आएगा उसके बारे में आप बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। इलेक्शन कमीशन की ये जो बात करना है ये इलेक्शन कमीशन को ही शक के दायरे में लाता है, और मेरे ख्याल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को किसी भी हालत में शक के दायरे में नहीं आना चाहिए
जी। एग्जैक्टली। अब मैं आपसे फिर से ये सवाल करना चाहूंगी, एक तो लंबा वक्त ही हो गया, क्या यही एक इकलौता चैलेंज होगा?
नहीं, देखिए ये चैलेंज नहीं है
जी।
चैलेंज ये है कि सारे मशीनों में VVPAT की काउंटिंग हो, पर्चा जो है मशीन के अंदर नहीं गिरे, पर्चा वोटर के हाथ में आए और वोटर उसको एक बैलेट बॉक्स में डाले, है ना, तभी तो हम इंश्योर कर पाएंगे कि पर्चे जो है वो सुरक्षित होंगे। मशीनें सुरक्षित है या नहीं, पर्चे सुरक्षित है या नहीं, इन सारी चीजों की जरूरत इसलिए है कि किसी भी तरह से ये जो डेमोक्रेसी का महायज्ञ है उस पर किसी का शक न हो
जी।
दूसरी चीज है इलेक्शन कमीशन, अगर ये कहती है कि हमारे पास अभी हॉयर विदल नहीं है, यानी कि हमने वो वीवीपैट मशीन तैयार नहीं की है, तो इलेक्शन कमिश्नर को इसका खामियाजा देना चाहिए, या इलेक्शन कमिश्नर्स को इसका खामियाजा देना चाहिए। तो उन्होंने ये दूरदेशी क्यों नहीं रखी, उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि इसकी जरूरत होगी। और दूसरी चीज, जब बार बार ये कहा जा रहा है, और अभी जो इंडिया का अलायंस का जो मीटिंग हुई उसमें राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया, ईवीएम पे ही उठाया है, बाकी उन्होंने सीधे घुमा के हर तरह लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाया। ये पूरा जनता का सवाल है और इलेक्शन कमीशन को इस पे खड़ा उतरना चाहिए। उनको जैसे भी हो, ऐसी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप किसी भी कंप्यूटर में आप दूसरा प्रिंटर लगा के भी प्रिंट निकाल सकते हैं। आप वो निकालिए, वो ट्रेल दीजिए, प्रिंट दीजिए और वोटर के हाथ में दीजिए और वोटर खुद उस बॉक्स में डालिए। ये करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, है ना। फेजेस में इलेक्शंस है, तो पहले फेज में तो अभी भी, पहले फेज को आने में अभी भी 16 दिन है
जी।
इस 16 दिन में आप इतने प्रिंटर का इंतजाम नहीं कर सकते। 5,000 करोड़ आपने खर्च कर दिए और आपने एक जो उसका छोटा सा पुर्जा है जिसका आप एक साथ करते तो शायद उसमें कुल मिला के 500 करोड़ का खर्चा होता, इससे ज्यादा नहीं होता, एक प्रिंटर ही तो है वो। तो इलेक्शन कमीशन को इसको एंश्योर करना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन को अपने को शक के दायरे से ऊपर रखने, उनको खुद आगे कहना चाहिए कि हाँ हम फर्स्ट फेज से पूरे पूरे काउंटिंग में वीवीपीएटी का ट्रेल करेंगे। कौन से मुश्किल काम है, इतने बड़े देश में इतना बड़ा तंत्र है और 26 लाख मशीनों के लिए 26 लाख ही तो प्रिंटर चाहिए। आप खरीद लीजिए या किराए पे ले लीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, इतने मशीनें उपलब्ध है इस देश में, तो आप कर सकते हैं। तो ये जो चैलेंज बार बार इलेक्शन कमीशन कह रहा है, ये अपने आप में इलेक्शन कमीशन को शक के दायरे में लाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो कंप्लीटली वो इंडिपेंडेंट है, पूरे सरकार से इंडिपेंडेंट है। देखिए इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और आज पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरा इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। और यहाँ तक कि आपके किसी भी शहर में, जिले में जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के अंदर है इस वक्त। कौन कहाँ मूव करेगा नहीं करेगा, इसलिए इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह की बात करता है तो इलेक्शन कमिश्नर अपने ऊपर सवाल उठाता है, उनको ये नहीं करना चाहिए।
एग्जैक्टली सर।
हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानसी हूँ आपके साथ, सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।